Thank you. भजन करें। यशोमती नंदन भज बालन गोकुल रंजन
Thank you.
परमहंस पहले गाय सतर सतर श्री श्रीमान श्री जवाहेश्वर अभय छन भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य जमाएंगेश्वर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौस्वामी प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णवृंद की इसकान फौंडाचार्य श्री प्रभुपाद की रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवचति गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिन श्याम कुंद राधा कुंद गिरी गोधाम की वृंदावन धाम की मायापुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की चौथी देवी की भक्ति देवी की समवेद भक्तवृंद की गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरी श्री समुद्र बोली ऑल ग्लोरी श्री समुद्र बोली ऑल ग्लोरी समुद्र बोली All glory to Sri Guru and Sri Gauranga. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, हर सोमवार को हम चैतन्य चरितमृत की क्लास करते हैं, बाकी दिनों में भागवतम की क्लास। तो आज चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के सातवें अध्याय का श्लोक हम पढ़ रहे हैं। आदि लीला सातवां अध्याय श्लोक 148 वेद माया वेदमाय मूर्ति तुम्हें साक्षात नारायण क्षमापराध पूर्व ये कैलं निदानं वेदमाय मूर्ति तुम्हें साक्षात नारायण क्षमापराध पूर्व ये कैलं निदानं वेदमाय मूर्ति तुम्हें साक्षात नारायण समाप्राद पूर्व ये कैलंदिदान
धन्यवाद। कहिए कहिए
वेदमाया मूर्ति तुम्हें
कौन है? आप साक्षात वैदिक ज्ञान और साक्षात नारायण है। कृपा करके हमें उन सारे अपराधों के लिए क्षमा कर दें जिन्हें हमने आपकी आलोचना द्वारा किया है। भक्ति मुख का पूरा मार्ग ही विनीत और दीन बनने की क्रिया पर आधारित है। महाप्रभु की कृपा से सारे मायावादी सन्यासी वेदांत सूत्र की व्याख्या सुनकर अत्यंत विनीत एवं दीन हो चुके थे। उन्होंने वेदांत सूत्र का अध्ययन न करके कीर्तन तथा नाच करने के लिए महाप्रभु की जो आलोचना की थी उसके लिए क्षमा मांगी। हम महाप्रभु के चिन्हों को ही अनुसरण करते हुए कृष्ण भावना आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। भले ही हम वेदांत सूत्रों में पटु ना हों और उनके अर्थों को ना समझ पाते हों, किंतु हम आचार्यों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, क्योंकि हम महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण कड़ाई से तथा आज्ञा पूर्वक कर रहे हैं। अतः ये मान लेना होगा वेदांत के विषय में जानते हैं।
ॐ ज्ञानमिमानस्य ज्ञानञ्जनाशलाख्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाभयं ददाति स्वमनसिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीयुतां स्वराजं सहगणानन्दनाथं वितन्तं सुदेवं सामेतं साधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा सहजनलिता श्रीशाखाश। हे कृष्ण जन्मासिंधो जगते गोपेश गोपिका राधा कल्पनोसुते सप्त कृष्ण गौरंगी राधे पूर्व ये कैलाश मिलाना। इसका अनुवाद एक बार फिर से। वहां महोदय आप साक्षात वैदिक ज्ञान और साक्षात नारायण हैं, कृपा करके हमें उन सारे अपराधों के लिए क्षमा कर दे जिन्हें हमने आपकी आलोचना द्वारा किया है। तो आप इस समय आदि लीला का सातवा अध्याय पढ़ रहे हो और इस अध्याय में आपने पढ़ा कि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में वो रुके थे वाराणसी में। वाराणसी का एक और नाम है बनारस। और वहाँ प्रकाशानंद सरस्वती उनके शिष्यों की सभा चल रही थी। उन्होंने देखा कि इतने प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी का एक और नाम है निमाई पंडित, क्योंकि छोटी आयु में ही वो बड़े विद्वान बन गए थे। आज से 500 साल पूर्व नवदेव स्थान का बड़ा खास महत्व था। भारत के जितने विज्ञानी बड़े ज्ञानी लोग थे, संस्कृत के पंडित, सब वहाँ रहते थे। और निमाई पंडित को सबसे प्रसिद्ध पंडित माना जाता था। और केशव कश्मीरी, जो उस समय के संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे, उनको भी निमाई ने हरा दिया था। तो दूसरे शब्दों में पूरे भारत में लोगों को ये ज्ञान था कि निमाई पंडित जो है संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान है। तो यहाँ उन्होंने देखा कि निमाई पंडित उनके साथ बैठकर ध्यान करने के बजाय, वेदांत शास्त्र का अध्ययन करने के बजाय क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। खैर, महाप्रभु जी वृंदावन को जा रहे थे, तो जब उन्होंने ये आलोचना सुनी, उन्होंने तो परवाह नहीं की, उनके भक्तों ने थोड़ी परवाह की। पर जब वहां पर वृंदावन से लौटे, तो फिर वो ठहरे एक भक्त चंद्रशेखर के घर में। और चंद्रशेखर जो थे, वैसे भौतिक दृष्टि से शूद्र जाति के थे। किस जाति के? आजकल हमारे भारत में सब चर्चा करें ऊंची जाति नीची जाति, कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है, और नीची जाति का है तो ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए। तो हमारे शास्त्र में कहा गया है खलो शूद्र संभवा। और वैसे क्षेत्रीय महाप्रभु जी तो प्रकट हुए थे ब्राह्मण खानदान में, पर वो रह रहे थे किसके घर? शूद्र के घर। तो आप लोग प्रचार के दौरान कह सकते हो कि हमारे सिद्धांत में उदाहरण है कि महाप्रभु जी जिनका जन्म हुआ था, जो प्रकट हुए थे ब्राह्मण खानदान में, वो रह रहे थे शूद्र के घर में। कलो शूद्र संभव। वैसे तो शास्त्रों का उपदेश है कि इस युग में सभी शूद्र स्वभाव के है, पर क्यों रह रहे थे चंद्रशेखर के घर में? क्योंकि वो थे उच्च कोटि के भक्त, वो भगवान के भक्त थे, इसलिए महाप्रभु जी उनके घर में रह रहे थे। तो जब महाप्रभु लौटे वृंदावन से, चंद्रशेखर के घर में रुके थे, और एक बौर भक्त थे तपन मिश्रा, उसके घर में वो जाते थे भोजन स्वीकार करने के लिए। तो फिर इनके जो भक्त थे भगवान के, ये सह नहीं सके कि मायावादी इतनी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है आपकी, और हम ये सह नहीं सकते। तो उनकी क्या इच्छा थी? उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार से महाप्रभु जी की चर्चा हो इन मायावादियों के साथ। वैसे तो माया चैतन्य महाप्रभु जी मायावादियों के सिद्धांत को उन्होंने बड़े तेजी के साथ विरोध किया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे परम गुरु जी, उन्हें सिंह गुरु भी कहा जाता था, और कहा जाता है वो इतने तेज थे, जोर से प्रचार करते थे मायावादी सिद्धांत के विरोध में, कि मायावादी लोग जब उन्हें देखते थे सड़क की बाएं तरफ चलते हुए, वो दाहिने तरफ हो जाते थे। मतलब उनको इतना भय था। तो महाप्रभु जी ने भी हमें उपदेश दिया कि हमें मायावादियों की संगत से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मायावादी जो हैं एक तरह से महान अपराधी हैं। स्वीकार करते हैं कि परम भगवान हैं, उनका कहना कि भगवान निराकार है, भगवान का दिव्य रूप संभव नहीं, या जब भगवान प्रकट होते हैं तो साधारण व्यक्ति समान बन जाते हैं, तो इस प्रकार वो माया भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं कर पाते। तो तपन मिश्रा और चंद्रशेखर ने कहा कि एक ब्राह्मण भी आ गया था, एक महाराष्ट्र ब्राह्मण था, जिसने महाप्रभु जी को निमंत्रण दिया था उनके घर में आकर भोजन स्वीकार करने के लिए। महाप्रभु जी अलग अलग रियासता भक्तों के घर में जाते थे भोजन स्वीकार करने। तो फिर महाप्रभु जी मान गए कि ये मायावादी सन्यासी को मिलेंगे कहाँ, इनके घर में। तो जब इनके घर में पहुंचे, ये सारे सन्यासी ऊंचे मंच पर बैठे थे, महाप्रभु जी वहां पहुंचे। कहां बैठे वो? वहां जहां के लोग पैर धोते हैं मंदिर में प्रवेश करने से पहले। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमें विनीत होना चाहिए भक्तियों के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो यहां आप एक उदाहरण देख रहे हो कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और उन्होंने विनीत का उदाहरण दिया। ऊंचे मंच में बैठने के बजाय कहां बैठे? यहां के लोग पैर धोते हैं। और जब मायावादियों ने देखा तो महाप्रभु जी ने अपना दिव्य प्रकट दिव्य रूप भी प्रकट किया। आजकल अनेक व्यक्ति ये दावा करते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं। पर जब आप उनसे पूछो आपको दिव्य चमत्कार दिखा सकते हो तो क्या कहते हैं? अभी तक नहीं दिखाया तो ये मतलब नहीं कि कल नहीं दिखा सकेंगे। तो वो आपको पोस्ट देते, चेक दे देते हैं कि हाँ 30 साल बाद हम एक गोवर्धन पर्वत को उठाएंगे। तो महाप्रभु जी ने अपना दिव्य लीला फिर प्रकट की। वैसे तो बाल लीला में महाप्रभु जी की बाल लीला पढ़ते हो तो आप देखते हो कि जब बाल लीला, जब छोटे थे बालक थे, जब भी उन्होंने अनेक स्थानों में अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी। और महाप्रभु जी की लीला में आप ये भी देखते हो किस प्रकार उन्होंने अपने सद्भुज का रूप प्रकट किया, महाप्रकाश का रूप प्रकट किया। तो भगवान अपने विराट रूप को भी प्रकट किया था उन्होंने। तो महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं जो प्रकट हुए थे भक्त के रूप में। पर इसका यह अर्थ नहीं कि उन्होंने भगवान के लक्षणों को प्रकट नहीं किया। जैसे कि यहां जबकि महाप्रभु जी मिले थे ये मायावादी सन्यासियों को, तो उनके चेहरे से इतनी रोशनी प्रकट हुई जैसे कि करोड़ों सूर्यों की रोशनी को जोड़ दिया जाए। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना तेज ये प्रकाश होगा जब करोड़ों सूर्यों की रोशनी को जोड़ दिया जाए। और फिर ये मायावादी समझ पाए क्या कि ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है। फिर आगे जो इनके जो गुरु थे प्रकाश चंद्र सारस्वती, वो उन्होंने इनके हाथ को पकड़कर ले गए ऊपर मंच पर बिठाने के लिए। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं कि अज्ञात सुकृति, उन्होंने कृपा सेवा की। ज्ञात सुकृति, अज्ञात सुकृति। कई बार हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं जानते हुए किसके बदले में हमें लाभ मिलेगा। कई बार आप अज्ञानता से जुड़ जाते हो ये जाने बगैर किसका आपको लाभ आ रहा है। जैसे कि हमारे भक्त सारे विश्व में ग्रंथों का वितरण करते हैं, कई लोग तो ग्रंथों को लेते हैं ये जानकर ठीक है भगवत गीता लेंगे, भगवतम लेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, घर में रखेंगे, इसमें हमें लाभ है। पर कई व्यक्ति हैं खास करके पश्चिम देशों में जो ग्रंथों को लेते हैं ये जाने बिना कि ये दिव्य ग्रंथ है या इसको घर में लाने से ही हमें लाभ होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। लोग कई बार लोग साधुओं को दान दे देते हैं जाने बगैर कि इसके में इसके बदले में हमको ये दान में लाभ मिलेगा। तो कई बार हम सेवा निभाते हैं ये जाने बिना कि इसके बदले में हमें कोई आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। तो प्रकाश नंद सरस्वती को ये इस समय हालांकि वो प्रभावित हुए थे, उनको पकड़ कर ले आए ऊपर मंच पर बिठाने के लिए। और आगे चल के फिर इनकी चर्चा हुई वेदांत सूत्र के ऊपर। और आगे चलकर महाप्रभु ने सिखाया संबंध अभिधेय और प्रयोजना। वेदांत सूत्र के आधार पर उन्होंने सिखाया क्या कि हमारा संबंध क्या है परम भगवान के साथ। क्या है हमारा संबंध? जीवेरे स्वरूपाय कृष्ण नित्य दास। हम सब क्या है? सदा भगवान के दास रहेंगे। ये नहीं कि आज दास हैं कल एक बन जाएंगे। ये मायावादी सिद्धांत का वैष्णव जो है विरोध करते हैं। फिर आगे उन्होंने सिखाया अविधेय कि ये जो संबंध है भगवान के साथ ये किस माध्यम से स्थापित हो सकता है। जैसे कि हम लोग वैदिक भक्ति पर बल देते हैं। वैदिक भक्ति का क्या अर्थ है? वैदिक भक्ति का अर्थ है अनेक नियमों का पालन। तो वैदिक भक्ति का अर्थ है अनेक नियमों का पालन। और हम अनेक नियमों का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पालन से आप अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। और प्रयोजना जो जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? जीवन का अंतिम उद्देश्य है भगवत प्रेम अनुकूल कर्म। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने सिखाया कि हम सबका संबंध क्या है भगवान के साथ, और उसको प्राप्त करने का साधन क्या है? अविधेय। ये जो अनेक नियम जिनका हम पालन करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि यू वांट समवन टू ट्रांसलेट मी, मारी या ट्रांसलेट इज कॉल हु कैन सिंस यू आर सेलिंग हु कैन ट्रांसलेट फॉर महाराज ओके समवन कैन ट्रांसलेट बिकॉज आई मीन तो जैसे कई बार लोग दोष देते हैं कि आपकी संस्था में बहुत से नियम हैं, है कि नहीं? कहते इतनी नियम तो आपने कहा देखे ही नहीं। तो ये नियम जो हैं, जैसे आप वैदिक भक्ति करते हो, वैदिक भक्ति का अर्थ है नियमों का पालन। तो नियमों का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके द्वारा आप अपना संबंध स्थापित कर सकते हो परम भगवान के साथ। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि कोई नियम के पालन की आवश्यकता नहीं, वो आपको धोखा दे रहे हैं। जब श्रील प्रभुपाद भी अमेरिका गए थे और पहला साल तो उन्हें अत्यंत संघर्ष करना पड़ा। जब प्रभुपाद जी ने प्रचार का आंदोलन आरंभ किया तो कई ढोंगी सन्यासी जो वहां पहुंचे थे उन्हें डर लगा कि स्वामी जी असली संदेश दे रहे हैं। तो कहने लगे स्वामी जी को, स्वामी जी आप जानते नहीं अमेरिकन लोगों को, कोई सुनेगा नहीं आपकी शिक्षा को। अभी हमारे जैसे कोट पतलून पहनो, छुरी काटे से खाओ वगैरह। तो ये जो नियम है इनका पालन आवश्यक है अगर हम भगवत प्रेम को अनुकूल करना चाहें। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी ने ये वेदांत सूत्र का उपदेश दिया इस नियम के आधार पर, अभिधेय प्रयोजना संबंधक पर, तो जो मायावादी सन्यासी थे उनके मन में कोई शक नहीं रहा, क्या कि स्वयं भगवान है। तो यहां जो मायावादी सन्यासी हैं उनके गुरु कह रहे हैं क्या, महा महोदय आदर के साथ, सर, जैसे भारत में आप कहते हैं जब चर्चा करते हैं अक्सर वो लोग कहते हैं सर सर सर, मतलब कि सर जो आपसे थोड़ा सुपीरियर हो। तो यहां कह रहे हैं मायावादी सुने, महोदय आप साक्षात वैदिक ज्ञान और साक्षात नारायण हो। तो वैदिक ज्ञान जो है उत्पन्न कहां से होता है? वेद शास्त्र के समय वैदिक ज्ञान उत्पन्न होता है परम भगवान से। हाँ, भगवान ने गीता में क्या कहा? सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो माथा स्मृति मा ज्ञानम अपहानम च वेदे च सर्वेद अहम है वेदयो वेदांत वेदविद एव च। हम सारे वेदों द्वारा मैं ही जाना जाता हूं। जैसे कि भागवत धर्म के प्रथम स्कंध में भी कहा गया है वासुदेव परा वेदा। सारे वैदिक साहित्य का उद्देश्य क्या है? परम भगवान को समझना। अगर आप केवल वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो, जैसे कई लोग एकेडमिक स्टडी करते हैं, पर आप उसके अभी भाव को नहीं समझ पा रहे, तो आपको कुछ लाभ नहीं पहुंचेगा। तो यहां मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं, आप ही हो साक्षात वैदिक ज्ञान। दूसरे शब्दों में इस ज्ञान में और भगवान में कोई अंतर नहीं। जब आप वैदिक शास्त्र का अध्ययन करते हो उदाहरण के लिए, तो आप भगवान के दिव्य संगत को प्राप्त कर रहे हो। जैसे कि आप भागवतम के प्रथम स्कंद में देखते हो कि भीष्म देव को यह वर प्राप्त हुआ था कि वो चुन सकते थे अपने मृत्यु के समय, है कि नहीं। और कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जब उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी प्राप्त हो गई है, तो उन्होंने क्या सोचा, अब मेरे और रहने की आवश्यकता नहीं, और उन्होंने श्री त्यागने की तैयारी की। और उनका क्या सौभाग्य था कि परम भगवान स्वयं उनके समक्ष आए, अकेले नहीं, सारे देवता पांडव भाइयों सबके समक्ष, और भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। तो अगर हम आपसे पूछें कि आप में से किन किन की इच्छा है कि शरीर त्यागते समय आपको भी भगवान का दिव्य साक्षात दर्शन प्राप्त हो, तो आप क्या करें, किन किन की इच्छा है? सबकी। तो आप सबकी इच्छा है कि शरीर त्यागते समय आपको साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त हो। अब आप में से कितने भक्त सोचते हो कि भीष्म देव जी का सौभाग्य आपको भी प्राप्त होगा? कोई नहीं। आप सोच रहे कि आपके ये सौभाग्य नहीं कि भगवान स्वयं आएंगे सब पांडव भाई देवताओं के साथ, है ना। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि आप सबको ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो आप कहोगे कैसे? प्रभुपाद जी इस विषय की चर्चा करते हैं प्रथम स्कंद के तात्पर्य में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप ध्यान पूर्वक भागवतम और गीता को सुन रहे हो, तो आपको वही लाभ प्राप्त होगा जो भीष्म देव को प्राप्त हुआ, भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करते। समझे आप? तो दूसरे शब्दों में भागवतम और भगवत गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो अगर आप ध्यान पूर्वक भागवतम को सुन रहे हो शरीर त्यागते हुए, ध्यान पूर्वक भगवत गीता का उच्चारण सुन रहे हो और हरि नाम का उच्चारण सुन रहे हो, तो आपको वही लाभ प्राप्त हो सकता है जो कि भीष्म देव को प्राप्त हुआ, भगवान का साक्षात दर्शन लेते हुए। तो दूसरे शब्दों में भगवान के ग्रंथों में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो यहां मायावादी सन्यासी कह रहे हैं आप साक्षात वैदिक ज्ञान हो। तो जब आप वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस उपदेश में और परम भगवान में अंतर है। इस उपदेश में परम भगवान में कोई अंतर नहीं। इसीलिए भगवद गीता में भगवान जीव की तपस्या, शरीर की तपस्या और मन की तपस्या की चर्चा करते हैं। और जीव की तपस्या का चर्चा करते भगवान क्या कहते हैं, जीव की एक तपस्या है वैदिक साहित्य का उच्चारण करना। क्योंकि जब आप वैदिक साहित्य का उच्चारण करोगे, जब आप हरे नाम का उच्चारण करोगे, जब आपके पास प्रजल्पा के लिए समय नहीं रहेगा।
प्रजल्प द्वारा विनश्यति, भक्ति नष्ट हो जाती है, और कृष्ण कथा के द्वारा भक्ति मजबूत बनती है, प्रसिद्धि। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान के नामों में कोई अंत नहीं, जैसे कि कहा गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भिन्नात्म नाम नामिनः। भगवान के नामों में और भगवान में अंतर है? नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा, हे भगवान, आपने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है, दूसरे शब्दों में आप और आपके नामों में कोई अंतर नहीं, पर मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं आपके नामों के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे भक्त के रूप में, उन्होंने हमें उपदेश दिया, जो कि वास्तविकता में हम सबकी स्थिति है। हम सबकी स्थिति क्या है कि एक तरह से तो हम जानते हैं कि भगवान के इनके नामों में अंतर नहीं, एक तरह से हम जानते हैं कि भगवान के नामों में पूरी दिव्य शक्ति है, एक तरह से हम जानते हैं कि शास्त्रों में और भगवान में कोई अंतर नहीं, पर दूसरी तरफ से हम इनके प्रति आकर्षित ही नहीं होते। जैसे भागवतम का अध्ययन किया जा रहा है, आपको नींद आ जाएगी, जाप हो रहा है, आपको नींद आ जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि हमारा इतना गहरा आकर्षण नहीं है। अब क्लास के बाद जब आप प्रसाद के लिए जाओगे, जब पूरे होश में रहोगे, आप प्रसाद खाते वगैरह तो कभी आपको नींद नहीं आ सकती। क्योंकि अगर प्रसाद में थोड़ा ज्यादा निमक भी हो, प्रसाद के प्रति हमारा आकर्षण रहता है। तो यहाँ मायावादी सन्यासी क्या कह रहे हैं, आदर के साथ कह रहे हैं, महोदय आप जो हो साक्षात वैदिक ज्ञान हो और आप स्वयं नारायण हो। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कहते हैं, कृपा करके हमें उन सारे अपराधों से क्षमा कर दो। अपराधों से क्षमा चाहते हैं। इस अध्याय में आप पढ़ चुके हो कि किस प्रकार इन मायावादियों ने चैतन्य महाप्रभु जी की आलोचना की, क्या निकम्मा सन्यासी है, धोगी सन्यासी है, हमारे साथ बैठकर अध्ययन करने के बजाय सेंटिमेंटल सन्यासी है, अनेक प्रकार के उन्होंने अपराध किए। तो वो कह रहे हैं इन अपराधों से मुझे क्षमा कर दो। तो अपराधों से हमें बचना चाहिए। अनेक प्रकार के अपराध हैं। एक है हरि नाम के प्रति अपराध। हम लोग रोज सुबह 10 नाम अपराधों का उच्चारण करते हैं। भाव जन्म करे यदि श्रवण कीर्तना तबु तन पाय कृष्ण पदे प्रेम धाना। चैतन्य चरितमृता में कहा गया है, एक जन्म नहीं पर अनेक जन्मों में अगर आप यह हरि नाम करते जाओगे, साथ में अपराध करते जाओगे, तो क्या भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो हमें हरि नाम के प्रति जो नाम अपराध हैं उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। और जो 10वां नाम अपराध है, इसके 2 अर्थ है। एक तो है भौतिक आकर्षण बनाए रखना, दूसरा है लापरवाही से जाप करना या ध्यान पूर्वक होकर जाप नहीं करना। जब आप ध्यान पूर्वक होकर आपके 16 माला का जाप नहीं करते, तो वो भी एक अपराध है। तो एक अपराध है नाम अपराध, हमें नाम अपराधों से बचना है। फिर आगे है गुरु अपराध। नाम अपराध में गुरु अपराध भी गिना जाता है। 3रा अपराध है क्या, गुरु के उपदेश श्रद्धा नहीं रखनी या उनके आदेश को उन्हें साधारण व्यक्ति के समान समझना। ये नहीं कि गुरु को चमत्कार दिखाएगा या रंगला पैदा कर देगा आदर लेने के लिए। गुरु का कर्तव्य है वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदार पश वेगम, मन रीतियों को वश में रखते हुए जो परंपरा का शिक्षा है, परंपरा की शिक्षा है, उसे सोते जैसे आगे रख देना, ना एक शब्द को जोड़ना ना एक शब्द को घटाना। और अगर हम यथारूपी संदेश को आगे रखेंगे तो आवश्यक इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हो कई बार नए भर जुड़ते हैं संत, वो प्रचार में जाते हैं, वो ही सुनाते हैं जो कि उन्होंने क्लास में सुना, और वो दूसरों को प्रभावित कर देते हैं भक्ति के मार्ग में जुड़ने के लिए। तो आगे गुरु की इच्छा क्या है? हर भक्त हर शिष्य भगवान के शरणागत हो जाए। श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि तीन प्रकार के शिष्य होते हैं। सबसे उत्तम कोटि का शिष्य वो है जो कि गुरु के मन को समझता है और बोले बिना भी उस आदेश का पालन करता है। दूसरे श्रेणी का शिष्य है जब गुरु कहता है इस प्रकार से सेवा करो, ये बेहतर है, तो उसको स्वीकार करते हुए उसका पालन करता है। जब मायावादी सन्यासी ने पूछा आप इतने बड़े विद्वान होने के कारण हमारे साथ बैठकर अध्ययन क्यों ध्यान क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने कहा महाप्रभु ने मेरे गुरु ने देखा और मुझे देखकर ये सोचा क्या मैं तो मूर्ख हूं, मेरे में केवल ये हरि नाम के उच्चारण की योग्यता है, आपके साथ बैठकर वेदांत सूत्र के अध्ययन की योग्यता नहीं। और ये स्वयं भगवान है, उन्होंने क्या कहा? गुरु ने मुझे मूर्ख समझा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बराबर पंडित हूं। तो दूसरे श्रेणी का शिष्य है जो कि गुरु के आदेश में श्रद्धा रखकर पालन करता है, जानते हुए कि यही है मेरे बेहतर। और तीसरे श्रेणी का शिष्य कौन है? चाहे गुरु कुछ भी कहे, उसने करना वही है जो उसका मन की इच्छा है। तो जैसे भगवान कहते हैं ये यथा मैं प्रपदयते, जितनी मात्रा में जो मेरी शरण में आएगा उतनी मात्रा में ही मैं भी उसे अपना दर्शन दूंगा। तो जितनी मात्रा में आप शरणागत होने का प्रयास करोगे उतनी मात्रा में ही आपको बुद्धि मिलेगी दृढ़ होने के लिए या कमजोर रहने के लिए। देखा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से स्वीकार करते हैं वो आगे बढ़ पाते हैं। जो सदा ये सोचते रहते हैं हम इतने होशियार हैं दूसरे मूर्ख हैं, वो आगे बढ़ने के बजाय समय के साथ पीछे हो जाते हैं। आपको चैतन्य चरितमृत में इस रामचंद्र पुरी का उदाहरण प्राप्त होता है। किस प्रकार रामचंद्र पुरी पहले तो अपने गुरु के भाव को नहीं समझ सके, गुरु को उपदेश देने लगे कि आप ब्रह्मांड का चिंतन करो। किस प्रकार वो एक समय चैतन्य महाप्रभु जी के कमरे में गए, वह उन्होंने देखा कि अनेक चीटियां फर्श में थी, तो उन्होंने क्या निर्णय लिया? जरूर ये सन्यासी मीठा खा रहा था, मीठा गिर गया था जमीन में, फिर इतनी चीटियां आ गई। असल में चीटियां आई थी क्योंकि गर्मी थी, तो चीटियों को भी गर्मी लग रही थी तो हवा खाने ऊपर खा गए। और यही रामचंद्रपुरी सन्यासियों को निमंत्रण देते थे, उन्हें भोजन रख देते थे। सन्यासी कहते थे भाई हमने तो सन्यास किया इतना नहीं खाना चाहिए, फिर वो क्या कहते थे? अरे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का उनको इनकार कर रहे हो, अपराध। फिर वो खा लेते थे तो कहते थे देखो क्या ढोंगी सन्यास, सन्यास लेते हैं और खाते हैं गृहस्थ से भी ज्यादा। तो अगर हम इस प्रकार का भाव रखेंगे, सदा आलोचना करना, भक्तों में नुक्स निकालना, ये करना वो करना, तो आपका अपना भक्ति का जो जीवन है कमजोर हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी का एक पत्र मैं पढ़ रहा था पिछले हफ्ते, जिसमें प्रभुपाद ने कहा कि हमें एक दूसरे के गुणों को देखना है, एक दूसरे की प्रशंसा करनी है और एक दूसरे को प्रचार में भगवान के शरणागत होने में सहयोग देना है। ये नहीं कि हम सदा दूसरों की आलोचना करते रहें और केवल अपने गुणों का सपना देखते रहें। अक्सर क्या होता है, हम सब तो सोचते हैं हम इतने उच्चे कोटि के भक्त हैं और हम सोचते हैं हम श्रद्धालु हैं, ईमानदार हैं, बाकी सब चोर हैं, सब बेईमान हैं, ये हैं वो हैं। तो इसके बजाय सबके गुणों को देखो और सबके उत्साह को बढ़ाने का प्रयास करो। तो यहाँ ये सन्यासी क्या अपराधों की क्षमा मांगते हैं। तो एक है नाम अपराध, फिर है गुरु अपराध, फिर है सेवा अपराध। सेवा करते हुए आप अनेक अपराध करते हो, जैसे कि हम भगवान के आठवें विग्रह की पूजा करते हैं, तो आठवें विग्रह की पूजा के संबंध में कई अपराध हैं, जैसे कि हमें पीठ नहीं दिखानी चाहिए भगवान को, हमें भगवान के विग्रह के सामने कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए जिसका कृष्णा से संबंध नहीं हो। कई बार हम देखते हैं कि भक्त एक दूसरे के साथ कैसे हो साधारण चर्चा करते हैं भगवान के विग्रह के सामने, पर भगवान के विग्रह के सामने केवल कृष्णा संबंधित कथा होनी चाहिए, कोई भौतिक चर्चा। भौतिक चर्चा करनी है तो मंदिर के बाहर जाके करो, भगवान के विग्रह के सामने नहीं। फिर भगवान के विग्रह के समक्ष हमें भोजन ही खाना चाहिए, चरणों में तो स्वीकार कर सकते हो, फिर महाप्रसाद का एक समय दिया जाए तो स्वीकार कर सकते हो, पर ये नहीं है कि आपने प्रसाद की थाली लाओ भगवान के सामने बैठ गए। और इस प्रकार प्रभा जी खास करके जो पुजारी हैं, जो आचर विग्रह की सेवा में जुड़े हैं, उनको प्रभा जी ने उपदेश दिया, डीडी वर्शिप इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, क्लीनिनेस एंड पंक्चुअलिटी। हमें ऑल्टर को बिल्कुल सफा रख साफ रखना चाहिए, भगवान का भोग बिल्कुल ठीक समय लगना चाहिए, एक सेकंड आगे नहीं एक सेकंड पीछे नहीं, भगवान के द्वार बिल्कुल ठीक समय खुलने चाहिए, भगवान की आरती बिल्कुल ठीक समय होनी चाहिए। तो इस प्रकार अनेक अपराध हैं जिनका वर्णन रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में करते हैं और हरि भक्ति विलास में और गहराई के साथ इसका वर्णन है, जिन अपराधों से हमें बचना चाहिए। तो भगवान के आर्च विग्रह के प्रति भी हम अनेक अपराध कर सकते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। आगे है फिर जीवापराध, जीवात्माओं के प्रति अपराध करना। हमें किसी चीटी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए कि हर जीवात्मा का अधिकार है जीने के लिए। आप श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद में जद भारत की कथा पढ़ते हो कि किस प्रकार निवेदन किया था कि जद भारत को महाराज भोगना की पलकी को उठाने में सहयोग देना चाहिए। जब जद भारत साथ जुड़े, वो तो अपने पैरों को पृथ्वी को पर रखने से पहले आगे तीन कदम तक देखते थे, कोई चीटी जीवात्मा तो नहीं है। और दूसरे जो थे उन्होंने उनकी चिंता भी नहीं की। तो जीव अपराध मतलब कि हम किसी प्रकार की जीवात्मा को किसी रूप से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। अज्ञानता से कुछ हो जाए तो अलग बात है, पर ज्ञान से हमें किसी जीवात्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। अब चैतन्य चरितमृत में मृगारी की कथा पढ़ते हो, जो बड़ा भयंकर शिकारी था, जानवरों को घायल करता था, मरते हुए देखकर आनंद प्राप्त करता था, नारद मुनि जी की संगत से उसके हृदय में ऐसा परिवर्तन आया कि बाद में अपने पैरों को भी नहीं रखता था जमीन पर, दिए देखने से पहले कि कोई जीवात्मा तो नहीं है। तो यहां ये मायावती सुदाम क्या कह रहे हैं, हमें अपराधों से क्षमा कर दो जिन्हें आपकी हमने आपकी आलोचना की। तो कभी अगर आप किसी वैष्णव के प्रति अपराध करते हो, कभी आप ईर्ष्या द्वेष के कारण किसकी आलोचना करते हो, तो हमें उसके लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा नहीं मांगोगे अपराध करते जाओगे तो ये परिणाम होगा कि आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी को जब शिक्षा दे रहे थे, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड प्रभीत कुन भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लाता बीज। ये जो भक्ति का बीज है ये उगेगा जब आप श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से इसे पानी पिलाओगे, है कि नहीं। और उन्होंने आगे कहा कि भक्ति के बीज की सुरक्षा करने के लिए हमें अपने आप को साधु संगत में रखना चाहिए। पर आगे जाकर उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार एक पागल हाथी सुंदर बगीचे को नष्ट कर सकता है, वैष्णव अपराध द्वारा आपकी भक्ति का जो बगीचा विलास है वो उखड़ सकता है। तो दूसरे शब्द में हमें अपराधों से बचना चाहिए। चाहे आप नए भक्त हो या पुराने भक्त हो, अगर आप अपराध करोगे तो उसका परिणाम होगा। कल आपने श्रीवास पंडित का आविर्भाव तिथि मनाई थी तो प्रारंभ मनन महाराज ने श्रीवास पंडित के विषय में संक्षेप में कहा था। तो श्रीवास पंडित के घर में हरिनाम संकीर्तन हो रहा था। ये संकीर्तन आंदोलन जो आज सारे विश्व में है ये आरंभ हुआ था कहां? श्रीवास पंडित के घर में। तो एक ब्राह्मण था गोपाल छापाला, जिसके हृदय में ईर्ष्या थी, इस श्रीदार को इतना आदर मिल रहा है, पूरा शहर तरस रहा है इनके घर में दर्शन करने के लिए। तो उसने कहा कि मुझे श्रीवास की बेइज्जती करने दो। क्या? उसने जो समान जिसके द्वारा दुर्गा जी की पूजा की जाती है, मांस मच्छी वगैरह अंडा शराब की बॉटल सब रखी उनके द्वार के आगे। श्रीवास ने जब अपना दरवाजा खोला अगले दिन सुबह और ये सब दुर्गा जी की पूजा का सामान देखा, श्रीवास ने निम्रता थी, उन्होंने कहा पड़ोसी हो आओ देखो, मैं तुम्हें धोखा दे रहा था, मैं कृष्ण भगवान का भक्त नहीं हूं, मैं तो दुर्गा का भक्त हूं, ये देखिए ये प्रमाण है। किसी ने विश्वास नहीं किया, सब ने कहा ये किसी शरारती व्यक्ति बदमाश व्यक्ति की शरारत है। और ये बदमाश व्यक्ति का क्या हुआ? तीसरे दिन कोढ़ की बीमारी हो गई। ये गए चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास नहीं ग्रहण किया था, उन्होंने कहा जाकर मैंने मेरे हृदय में ईर्ष्या द्वेष था आपके प्रति भक्त के प्रति, तो मैंने ये किया था, मुझे माफ कर दो। पर महाप्रभु ने कहा तुम्हें लाखों सालों के लिए एक अपराध का परिणाम भुगतना चाहिए, और वो भुगत क्या ये ब्राह्मण। फिर महाप्रभु जी जब संन्यास लेकर लौटे फिर से ये ब्राह्मण आगे बढ़ा, महाप्रभु जी को कहा आप तो पतित पवन हो, पतितों का उद्धार करने के लिए आप प्रकट हुए हो, कृपा करके मुझे इस बीमारी के कष्ट से बचाओ बचाओ। महाप्रभु ने कहा कि अगर तुम बचना चाहते हो तो जाओ कहां? शिवा के पास। फिर वो शिवा के पास गए। भक्त जो हैं अक्सर अत्यंत दया दयालु होते हैं, और फिर शिवा ने उन्हें माफ किया। अमरीश महाराज दुर्वासा मुनि की कथा में भी आप देखते हो कि जब दुर्वासा मुनि पहुंचे भगवान के पास और कहा कि मुझे माफ कर दो, भगवान ने कहा मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में रहता हूं, मैं नहीं माफ कर सकता, कहां जाओ अमृत। तो हमें इस प्रकार अनेक अपना उदाहरण है। एक समय हरिदास ठाकुर हरिनाम की महिमा का गुणगान सुना रहे थे, उन्होंने कहा किस प्रकार नामाभासा के उच्चारण थे भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। एक ब्राह्मण था गोपाल चक्रवर्ती, जिसने कहा अगर नहीं होगा तो मैं आपका नाक काट दूंगा। तो मां हरिदास ने कहा काट दो जरूर हो जाएगा। तो तीसरे दिन के बाद उस ब्राह्मण का जो नाक है क्या पिघल कर दिया। तो वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। और यहां आप देख रहे हो कि मायावादी सन्यासियों ने अपना अपराधी भाव के लिए क्षमा मांगी, उनका भाव अपराधी था, उनकी वाणी अपराधी थी, उसकी उन्होंने क्षमा मांगी। और तो इस प्रकार से हमें भी विनम्रता के साथ सेवा करनी चाहिए। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, भक्तियों के पूरे मार्ग की विनीत और दीन बनने से क्रिया प्राप्त हो सकती है। तो हमें भक्ति योग के मार्ग में दीन रहना है और विनीत रहना है। आप महाप्रभु जी का उदाहरण देखिए, वो कितने विनीत हैं। हमने कई उदाहरण दिए जिसमें महाप्रभु जी विनीतता, अपनी विनीतता निम्रता को प्रकट कर रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी को शरणागत होने के 6 विभाग दिए तो क्या था छठा निवार ह्यूमिलिटी। तो हमें विनीत होकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में गए थे, उनको वहाँ जाते जाते कोढ़ की बीमारी हो गई थी रास्ते में, क्योंकि उन्हें गंदा पानी पीना पड़ा। तो जगन्नाथपुरी में सनातन गोस्वामी गरम रेत पर चल रहे थे, जो मेन सड़क है उस पर वो नहीं चल रहे थे। क्यों? उन्हें ये डर था कि कहीं गलती से कोई जगन्नाथपुरी के पुजारी के शरीर का शरीर मुझे नहीं छू ले, और मुझे छू देगा तो उनको भी बीमारी हो जाएगी और वो जो शरीर खराब हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो उन्होंने अब ये इस घटना से बचने के लिए गरम रेत में नंगे पैर चल रहे थे। तो ये है विनीत का उदाहरण। ऐसे अनेक और उदाहरण है। जब कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितमृता की चर्च की रचना करने से पहले अनेक संतों के पास गए और सब संतों से उन्होंने कृपा भीख मांगी, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दो कि मैं चैतन्य चरितमृता ग्रंथ की रचना कर पाऊं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा, मैं आशीर्वाद दूंगा पर एक शर्त पर। क्या? तुम कहा कि मेरे नाम का गुणगान नहीं करना, लोकनाथ उसमें भी। तो फिर आप देखते हो कि कहां भी उनके नाम का वर्णन नहीं। तो इस प्रकार हमें विनीत रहना चाहिए। और आगे क्या कहते हैं, विनीत और दीन। दीन का अर्थ है सबमिसिव। कई बार हम भक्ति के रास्ते में जुड़ना चाहते हैं पर हम दीन नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि हम सेवा करेंगे वह अपने शर्त पर, ऑन माई कंडीशन। अगर आप मुझे ये सेवा दोगे तो मैं करूँगा, नहीं तो विस्तार लेकर जाऊँगा। पर यहाँ प्रभुपाद जी अगर आप शास्त्रों को पढ़ो तो देखते हो विनीत भी रहना चाहिए और दीन भी रहना चाहिए। अगर हम दीन नहीं रहें तो विनीत भी नहीं रह सकोगे। क्योंकि दीन हम क्यों नहीं रहते, सबमिसिव हम क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास हर समस्या का हल है, हर प्रश्न का उत्तर है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भक्ति योग का मार्ग है ये निर्भर है। जैसे कि एक मकान बनाना, तो फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो मकान भी स्ट्रांग बनेगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्ति योग का मार्ग निर्भर है किस पर? विनीत पर और दीन भाव पर। तो अगर आप भक्तियों के मार्ग में सफलता चाहते हो तो आपको दीन भी बनना पड़ेगा। ये कीमत है। जैसे हम कहते हैं अहंकार को छोड़ो, तो जब तक हम अहंकार को रखेंगे, अहंकार का जो बोझा है आपके शरीर के बोझे से ज्यादा है। आपके शरीर का बोझा है 60 किलो, आपका अहंकार का बोझा है 70 किलो। तो आपको अहंकार को तोड़ना है, फिर ही आप भक्तियों के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकोगे। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्तियों का पूरा मार्ग ही विनीत और दीन बनने के क्रिया के पर आधारित है। तो अगर आप दीन नहीं बन सकते, अगर आप विनीत नहीं बन सकते, अगर आप सदा वैष्णव में निंदा करोगे, आलोचना करोगे, उनकी कमजोरियां निकालोगे, ये कमजोरी हो, ये कमजोरी, ये कमजोरी, तो आप भी अंत में कमजोर बन जाओगे। मुझे याद है एक समय एक अफ्रीकन भक्त आया था बॉम्बे 1975 में। तो वो आया था कीनिया से। तो उस समय मैंने सपना भी नहीं देखेगा कि देखा था कि मैं कीनिया जाऊंगा। तो कीनिया से आया था, अफ्रीकन भक्त था। तो प्रभुपाद जी को कह रहा था उस भक्त में ये कमी है, उस भक्त में ये कमी है, इस भक्त में ये कमी है, सब भक्तों में कुछ ना कुछ कमी सुना दी। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे किसी और मंदिर चले जाओ, कह रहे नहीं वहां भी ये कमी है, वहां भी ये कमी है। तो अंत में उसने ये इच्छा प्रकट की कि मुझे मायापुर जाकर अकेले में कुटिया बनाकर भजन करना चाहिए हरिदास ठाकुर जैसे। तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम हरिदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते, हमें साधु संगत की आवश्यकता है। उसने जिद की तो अंत में प्रभुपाद जी के पास कोई उपाय नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने फिर मायापुर के अधिकारियों को पत्र लिख के कहा कि इसे एक कुटिया बनाने के काम में भजन करने दो। चार पांच छह दस दिन उसने भजन किया, उसके बाद कहां रवाना हुआ किसी ने बाद में देखा ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें नीम भी बनना है और विनित भी बनना है, फिर आप शास्त्रों के असली उपदेश को समझ पाओगे, फिर आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। तो संक्षेप में हम सब भक्ति में जुड़े हैं, क्यों? क्योंकि हम भगवत प्रेम प्रयोजना अनुकूल करना चाहते हैं। पर भगवत प्रेम भी प्राप्त होता है कीमत पर। भगवान ने क्या कहा, सर्वा धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वं सर्वे पापेभ्यो मोक्षयामि मा सुतः। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुमने जो करना करो। उन्होंने कहा कि तुम मेरी शरण में आओगे, मेरे आदेश का पालन करोगे तो ही मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, है ना। भगवान कहते हैं मन मना बाबा मत भक्त मा दया जी माम नमस्कृणु माम वासुदेव सत्यम ते प्रति जने प्रयोश में। भगवान कहते हैं बिना शंका के तुम मेरे धाम लौटोगे। पर साथ में भगवान ने चार महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा भी की है। भगवान क्या कहते हैं, मन मना मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी उपासना करो, फिर तुम बिना शंका के मेरे धाम। भगवान ये नहीं कहते जो करना करो मेरे धाम जरूर लौटोगे। कई धर्म प्रचारक कहते हैं तुम इस गुरु से दीक्षा लो, यहां दीक्षा लो और बिना शंका के भगवान के धाम लौटोगे। पर हमारे शास्त्र में बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। तो संक्षेप में यहां आज के इस श्लोक में प्रकाशानंद सरस्वती मायावली महादेव परम भगवान चैतन्य महाप्रभु को नारायण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप में और शास्त्र में कोई अंतर नहीं। तो हम जब भगवद्गीता पढ़ते हैं खोलते हैं हमें हमारे मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि भगवद्गीता में क्या है, भगवान की वाणी। अब भगवतम के प्रथम स्कंध में देखते हो कि अर्जुन निराश हो गए थे जब उन्हें पता लगा कि परम भगवान अप्रकट हो गए हैं। फिर अर्जुन ने उन घटनाओं का स्मरण आरंभ किया जो भौतिक दृष्टि से असंभव थी और भगवान की कृपा से सफल हो पाए। उसके पश्चात अर्जुन ने भगवत गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया और जब उन्होंने गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया तो उन्हें ऐसे लगा कि परम भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं। फिर उनकी जो निराशा थी समाप्त हो गई। तो प्रभुपाद जी इस घटना के तात्पर्य में कहते हैं जैसे अर्जुन ने गीता के संदेश का स्मरण किया उसी प्रकार अगर इस संस्था के भक्त भी गीता के संदेश का स्मरण करेंगे तो उन्हें सदा ऐसे महसूस होगा क्या कि कृष्ण भगवान उनके संग में है और वो होना चाहिए हमारा उद्देश्य। तो यहाँ मायावादी क्षमा मांग रहे हैं उनकी आलोचना का और अपराधों का और प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें विनित भी होना है और दीन भी होना है, फिर आपको भगवान गुरु साधु की कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्णा।